Exato. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास में मिसाली भाई का मौजू पढ़ते हैं अपने हजरत पीयूष जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी दामत बरकातहुम की किताब मिसाली मर्द में से। मिसाली भाई बाकी उनवानात के मुकाबले में ऐसा लगता था कि जैसे ये एक मुख्तसर और छोटा बयान होगा दूसरों के मुकाबले में, मिसाली शौहर, मिसाली ससुर, मिसाली दामाद, लेकिन माशाल्लाह हजरत ने इसके अंदर काफी सारी यानी बातें रखी हुई हैं और जिसकी वजह से इसकी तवालत जो है मेरे ख्याल है बाकी सारे बयानात से ज्यादा हो गई है। तो अब ये आजिज भी सोच रहा है कि इसको इस स्पीड में अगर हम चलाते रहेंगे जिसमें हमारी आदत है तो फिर तो न जाने कितना लंबा सा लग जाएगा। बहरहाल देखते हैं, कोशिश करते हैं कि शायद इसको जल्दी खत्म किया जा सके। फिलहाल जो जो सब टॉपिक चल रहा है वो एग्जैक्टली भाई से मुताल्लिक अभी नहीं है बल्कि बहन भाइयों का ताल्लुक बेहतर बनाने के जरिए उसूल, यानी माँ बाप को ये नसीहत है कि वो अपनी औलाद के माबेन जो है ना वो अच्छे ताल्लुक बनाने के लिए क्या क्या इकदाम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हिकमतें इख्तियार कर सकते हैं। तो इस वक्त जो है वो माँ बाप मुखातब हैं। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिए थे। सेट रेगुलर फैमिली बॉन्डिंग टाइम, ठीक है, रेगुलर फैमिली बॉन्डिंग टाइम यानी रोजाना के हिसाब से घर के अंदर एक इंडोर्स का बॉन्डिंग टाइम होना चाहिए। और इसमें फिर बात हुई थी कि भाई मिल बैठ करके खाना खाना, तो ये गैर शादीशुदा बच्चों के लिए था। शादीशुदा जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको चाहिए कि वो माँ बाप के साथ भी कभी खाएं और वो अपने स्पाउस के साथ भी खाएं, ठीक है। ऐसा ना हो कि स्पाउस को जो है वो एकदम ही अलग छोड़ा हुआ है और बस इन्होंने तो सिर्फ माँ बाप के साथ खाना है जहां पर पर्दे की पाबंदी है। तो पर्दे की पाबंदी का मतलब ये नहीं है कि अब आपकी बीवी जो है ना वो अकेली खाना खा रही है और आप जो है वो अम्मी अब्बू के साथ खाना खा रहे हैं, ठीक है। या ये कि अगर दामाद साहब घर में मौजूद हैं तो दामाद साहब अकेले खाना खा रहे हैं और बेटी साहिबा जो है अपने माँ बाप के साथ हमेशा खाना खा रही है। घर दामाद भी तो होते हैं ना, ज्यादा नहीं होते अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन होते तो है ना। तो पर्दे की पाबंदी अल्लाह ताला का हक है, ठीक है। तो अल्लाह ताला का हक भी अदा करना है और ऐसे अदा करना है कि मामलात भी खराब ना हो, ठीक है। तो जब शादी हो जाती है तो उसके बाद जो है वो खाने की तरतीब ऐसी बनानी चाहिए कि बेटा जो है वो कभी अपने माँ बाप के साथ खाए, कभी जो है वो अपनी बीवी के साथ खाए, और बीवी को जो है ना वो गैर महरम देवर और जेठ के सामने मत मत घसीटे, मत उसको लेकर के आए, ठीक है। इससे जो है वो मोहब्बतें बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि मोहब्बतें अल्लाह ताला के हाथ में होती हैं और अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी करने के बाद हम अल्लाह ताला को खुश नहीं कर सकते। अल्लाह ताला को नाराज करके फिर मोहब्बतें हरगिज हरगिज खानदान के अंदर नहीं बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो हम अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें। हाँ, उसके लिए जो है वो एक बेहतर तरीका अख्तियार करें, कोई पार्टीशन रख लें, पार्टीशन के पीछे जो है वो घर की औरतें खा लें, सास जो है वो बहू के साथ खाए, ठीक है, या कोई बहन है वो बहू के साथ खाए, ठीक है। अब एक यानी देवर के साथ और जेठ के साथ बैठाने की क्या तुक बनती है? तुक क्या बनती है, मतलब अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की तो कोई तुक कभी ना कभी भी नहीं बन सकती। म्यूट हो गया खुद से। तो जब अल्लाह ताला की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारेंगे तब फिर अल्लाह ताला की मदद आएगी, वरना फिर अल्लाह ताला की मदद नहीं आती। अल्लाह ताला पर शैतान को खोल देते हैं हमारे ऊपर, फिर रोते फिरते हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। तो ये पॉइंट हो गया। अब अगला पॉइंट है कि फिर माँ बाप को चाहिए कि टेक योर चिल्ड्रन आउट, यानी घर से बाहर भी बच्चों को लेकर के जाएं। ये अब क्या बात हो रही है, ये आउटडोर्स फैमिली बॉन्डिंग टाइम, आउटडोर्स घर से बाहर फैमिली का बॉन्डिंग टाइम फैमिली को मुहैया करें। तो फरमाते हैं कि कभी कभी छुट्टी लेके बच्चों को कहीं बाहर लेके जाएं, यानी एक तो होता है ना शाम के वक्त आप पार्क ले गए, तो वो तो करना ही चाहिए, बच्चों के खेलने के लिए एक टाइम डेफिनेटली रखना चाहिए, ठीक है ना। स्पेशली जो लड़के होते हैं उनको एटलीस्ट 45 मिनट्स का फिजिकल एक्टिविटी घर से बाहर ओपन एयर, ठीक है, ये उनकी जिस्मानी जरूरत होती है, ठीक है। लड़कियों के लिए फिजिकल एक्टिविटी घर के अंदर, शरीयत ने बाकायदा घर के अंदर फिजिकल एक्टिविटी का कहा कि वो जमाने में जो चक्की पीसना होता था, जो फिजिकल यानी पानी पानी का गाढ़ा वगैरह उठाना, वो जमाने की फिजिकल एक्टिविटी थी, लेकिन अब की फिजिकल एक्टिविटी उसके हिसाब से कुछ इम्प्रोवाइज करें उसके ऊपर, लेकिन बहरहाल फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत होती है। तो रोजाना की फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई पार्क या इस किस्म का कोई एहतमाम करना कि जहां पर आपका बच्चा जो है वो दो चार बच्चों के साथ मिल करके कुछ साइकिलिंग कर सके, फुटबॉल खेल सके, या कोई और अकलमंदों वाला खेल खेल सके, बेवकूफों वाला खेल नहीं, जैसे कि कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। आप समझ गए होंगे मेरी क्या मुराद है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे छुट्टी देकर के तो मतलब क्या है कि डे लॉन्ग एक्टिविटी, कम से कम पूरे एक दिन की एक्टिविटी, ठीक है। तो फरमाते हैं कि जैसे गेम पार्क, खेलने वाला पार्क वगैरह, इससे वगैरह, ठीक है, यानी कोई बड़े पार्क्स जो होते हैं जिसमें यानी एंटरटेनमेंट पार्क्स कहते हैं उनको, सफारी टाइप की कोई जगह है, जू है, जू में आप जो है वो आधे घंटे में जाके फारिग नहीं हो सकते, यू नीड अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो है ना फिर बाकायदा छुट्टी लेने की जरूरत पड़ती है। तो गेम पार्क्स हो गए या वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी लोकेशन हो गई कि जब फैमिली के लोग अलग एक दूसरे के साथ जाते हैं, यानी अलग से बाकायदा ये एक दूसरे यानी फैमिली के मेंबर्स जो है एक दूसरे के साथ कहीं जाते हैं, तो उनका आपस का ताल्लुक मजबूत हो जाता है, इसी वजह से इसको बॉन्डिंग टाइम कहा जाता है, मोहब्बत बढ़ जाती है। लिहाजा ऐसे मौके साल में एक या दो दफा जरूर रखने चाहिए। साल में एक या दो दफा तो शहर के बाहर वाली एक्टिविटी या मुल्क के बाहर वाली एक्टिविटी, जिनको अल्लाह ताला ने माली वसत दी है, तो वो मुल्क के बाहर की भी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी लोग जो हैं वो शहर के बाहर की एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, या शहर के अंदर कोई मेजर एक्टिविटी, ठीक है। तो साल में एक या दो दफा, जो लोग सऊदी अरब में या मिडिल ईस्ट में रहते हैं तो उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वीजा फ्री, अल्लाह का शुक्र है अब तक वीजा फ्री एक्सेस हरमैन शरीफैन का अता फरमाया हुआ है। तो हरमैन शरीफैन की ट्रिप को भी जो है ना वो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि वो सिर्फ एक मारे बांधे की इबादत ना रहे, कि भाई एक गोया के अपने ऊपर से एक यानी एक बोझ उतार रहे हैं मदीना शरीफ जा करके या मक्का मुकरमा जा करके, ठीक है, बल्कि उसमें और चीजें भी प्लान करें कि जैसे ज्यारतें हैं, जैसे बच्चों को जो है वो खाने पीने के लिए वहाँ पे जो जगह है वहां पे लेकर के जाना, या कोई और इस किस्म के म्यूजियम्स वगैरह। अब तो इनका बहुत ज्यादा फोकस भी इस बात के ऊपर है कि जी म्यूजियम्स बनाए एक से एक बढ़ करके, तो इस तरह की एक्टिविटीज भी वहां पे हरमैन शरीफैन के अंदर भी की जा सकती है, तो वो भी एक बड़ा अच्छा आउटडोर्स फैमिली बॉन्डिंग टाइम बन जाएगा। आगे जो फरमाते हैं कि ये इबादत है, अल्लाह अकबर कबीरा, ये इबादत है, ठीक है, क्योंकि ये आप किस लिए कर रहे हैं, ये आप अपनी औलाद के हुकूक अदा करने के लिए कर रहे हैं। वो हुकूक कहाँ से आए, अल्लाह ने वो हुकूक लगाए, राइट, अल्लाह के बनाए वो हुकूक है ना, तो अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करना ये ऊपर जाके अल्लाह का ही हक अदा करना होता है कि उसके बताए हुए हुकूक जो हैं वो आप अपने बंदों को, अल्लाह के बंदों को दे रहे हैं। तो इस तरह से ये सब का सब इबादत है, बस नियत जो है वो अल्लाह की रजा और आखिरत की जजा होनी चाहिए, और तरीका शरीयत और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, बस दैट्स। बस वो चीज इबादत बन गई। ठीक है, नियत अल्लाह की रजा है और तरीका शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है, तो हर ये अमल इंसान का जो है मुसलमान का वो उसके लिए इबादत बन जाता है। उसको ये ना समझे कि वक्त जाया करते फिर रहे हैं, ठीक है, ये वक्त का जिया नहीं है बल्कि ये घर के अफराद के दरमियान सीमेंट का काम करता है, और ऐसे इवेंट्स यानी ऐसे मौकों से सब बच्चे फ्रेश तरोताजा होके आते हैं और एक दूसरे के साथ उनकी मोहब्बत प्यार का ताल्लुक बढ़ जाता है।
नहीं
फिजिकली
भाई,
तरोताजा हो लाइकली वो नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि ट्रैवल के अंदर जो है वो फिजिकली आप ड्रेन हो रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिकल फ्रेश की बात नहीं हो रही है बल्कि एक साइकोलॉजिकली वो फ्रेश होकर के आ रहे होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार का ताल्लुक बढ़ जाता है और फिर वो सारा साल इन यादों को एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। ठीक है, हम फलानी जगह गए थे, हमने वहां पे ये देखा था, या हमने वहां पे ये वाली एक्टिविटी करी थी, दोस्तों को भी आकर के बताते हैं और आपस में भी ये डिस्कशंस चलती हैं। ठीक है, वाटर पार्क या कोई भी ऐसी जगह जहां बेहयाई ना हो, ठीक है ना। अब वाटर पार्क जो है वो सऊदी अरब, अल्लाह का शुक्र है अभी भी मेरे ख्याल में यहाँ पे नहीं शुरू, हम तो अलहमदुल्ला तो खैर गए नहीं कभी, लेकिन बाकी दुनिया के अंदर वाटर पार्क का मतलब जो है ना फिर वो बेहयाई तो होती है। ठीक है, तो हजरत ने यहाँ पे फिर खास तौर पे जहाँ बेहयाई ना हो ये क्वालिफायर भी इसके साथ लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि जहाँ पानी होता है फिर वहां पर बेहयाई होती है। अब बीच के ऊपर अगर मुसलमान मुल्कों के अंदर जा रहे हैं और या इवन नॉन मुस्लिम मुल्कों के अंदर भी कोई अगर रहता है, तो वहां पे भी बीच का भी कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है, हमने तलाश कर लिया है, ठीक है, कि जहां पर कोई नहीं होता या कोई ऐसा टाइम होता है कि जिस वक्त कोई भी नहीं होता। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना, क्योंकि भाई शरीयत तो सुन्नत की पाबंदी तो शर्त है ना। ठीक है, तो इस वजह से किसी ऐसी जगह पे लेकर के जाएं या किसी ऐसे टाइम पर ऐसी जगह पे लेके जाएं कि जहां पे कोई भी ना हो, ऐसे लोग ना हो कम से कम। तो ये बच्चों को लेके जाना माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, यानी माँ बाप के ऊपर अल्लाह ताला ने ये बोझ डाला है, ये जिम्मा लगाया है। ठीक है, कि आउटडोर फैमिली बॉन्डिंग टाइम को अरेंज करें, और ये पहले बाप की जिम्मेदारी होती है और बाप के तहत रहते हुए ये माँ की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन असल में बाप की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो डेली का इंडोर्स फैमिली बॉन्डिंग टाइम ये पहले हमने पढ़ लिया था, और फिर डेली का आउटडोर फैमिली आउटिंग टाइम, आउटडोर बच्चों के लिए लड़कों के लिए खुसूसन आउटिंग टाइम ये भी, और फिर उसके बाद वंस इन अ वाइल बाहर लेकर के जाना। अच्छा, इसके अंदर जो है वो यानी आजकल के हिसाब से कोई ऐसा रेस्टोरेंट भी अगर हो, ठीक है, हम आपको एक प्रैक्टिकल यानी किताबों के हिसाब से तो फिर सिर्फ घर का मुत्तकी परहेजगार औरत का बनाया हुआ वुजू की हालत में बनाया हुआ खाना खाना हलाल और तैयब खाना, ठीक है, लेकिन इस वक्त जिस दौर के अंदर रह रहे हैं ना, उसके अंदर बहुत सारी चीजों का हमें ख्याल रखना पड़ रहा है। ठीक है ना, बाहर के इन्फ्लुएंसेस, हराम के इन्फ्लुएंसेस और गुनाह की तरफ माइल करने वाली चीजें इतनी ज्यादा हैं कि उसकी वजह से जो है ना वो हमें कुछ चीजों को रिलैक्स भी करना पड़ा है, जो कि हराम चीज नहीं है जिसको कि आप रिलैक्स कर रहे हैं, हराम को हलाल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो मकरूह तंजीही के दर्जे के अंदर चीजें हैं ना, मकरूह तंजीही के दर्जे की जो चीजें हैं उनको विद सर्टन प्रिकॉशंस, ठीक है ना, कुछ प्रिकॉशंस के साथ और कुछ एहतमाम वगैरह के साथ उनको जो है ना वो इस वक्त इख्तियार करना जरूरी हो रहा है। ठीक है, तो रेस्टोरेंट्स में जाना ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे मशायख की डिक्शनरी के अंदर, ये तो बहुत ही ज्यादा बुरी बात समझी जाती है, हराम नहीं समझी जाती लेकिन बुरी बात समझी जाती है। ठीक है, लेकिन इस वक्त जो है वो किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जहां पर के म्यूजिक ना हो, ठीक है, जहां पे म्यूजिक ना, म्यूजिक अंदर है कम बाहर, बाहर बैठने का कोई इंतजाम कर ले जहाँ पे म्यूजिक ना हो, ठीक है, और कोई और इस किस्म की खराफात और हराम चीजें ना हो यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसी जगह पे अपने फैमिली को लेकर के जाना, ये भी एक आउटडोर्स का फैमिली बॉन्डिंग टाइम होता है। ठीक है, और जहां पर जाहिर है खाना हलाल हो, यानी झटका झटका ना मिल रहा हो वहां पर, या कोई हराम शराब आपके टेबल पे ला करके वो ना रख रहे हो अगर नॉन मुस्लिम कंट्री के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो ये सारी पाबंदियां तो अपनी जगह पे रहेंगी, लेकिन बाहर जाकर के रेस्टोरेंट्स में कभी कभार खाना खा लेना, ये भी एक यानी रिकमेंडेड फैमिली आउटडोर बॉन्डिंग टाइम होता है। ठीक है, और अच्छा, अब एक बात साथ साथ ये भी गोश गुजार कर दूं कि ये जो बातें होती हैं ना, तो इनमें अगर सुपरविजन के साथ ये काम किया जाए ना, तो फिर इनके साइड इफेक्ट्स जो हो सकते हैं उनसे भी इंसान महफूज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटी, स्पेशली व्हेन यू आर टेकिंग एन एक्सेप्शन, है ना भाई, किताब के अंदर या हमारे मशाइख की जो 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 तौर तरीके थे, आप उनसे एक एक्सेप्शन ले रहे हैं ना, एक इस्तिस्ना ले रहे हैं ना, तो भाई जब आप कोई एक्सेप्शन लेते हैं ना, तो फिर देर इज अ बिग प्रोबेबिलिटी कि ये चीज जो है ना, वो फिर यानी आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ठीक है, इसके कोई नेगेटिव रिपरकशंस ना शुरू हो जाए आपके जात के अंदर या आपके फैमिली के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से इन चीजों को, जो एक्सेप्शनल चीजें होती हैं, उनको सुपरविजन के साथ यानी मशवरे के साथ और किसी की रहनुमाई के अंदर ये वाले काम करने चाहिए। ठीक है, और सुपरविजन और रहनुमाई जो है, ये जैसे कि आज अक्सर कहता रहता है कि भाई अल्लाह ताला ने सुपरविजन का अगर नेमत अता फरमाई है ना, कि कोई है सुपरवाइज करने वाला, तो इस नेमत को जो है ना, वो यूज करना चाहिए, इस नेमत को अब्यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप अब्यूज करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर ये नेमत आपसे छीन ली जाएगी। ठीक है, तो जो लोग यूज करते हैं तो वो फायदा उठाते हैं सुपरविजन की नेमत से, और जो अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उनसे खुश नहीं होता। ठीक है, आगे फरमाते हैं कि फिर माँ बाप को चाहिए कि जब भी बच्चों के साथ मिलकर बैठें, तो किसी न किसी बच्चे की बचपन की बातों और यादों का तذکرہ जरूर करें। ठीक है, ये भी एक माशाल्लाह जबरदस्त किस्म की टिप दी कि बच्चों की बचपन की बातें, बचपन से मुराद जो है वो जब अभी भी बच्चे ही हैं। ठीक है, क्योंकि शादीशुदा एज से पहले की ज्यादातर ये बात हो रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा छोटी एज की कोई बात जो है ना, उसका तذکرہ छेड़ दें। बचपन की बातों का तذکرہ करने से बच्चों को अपनाइयत महसूस होती है, और वो महसूस करते हैं कि हमारी फुला बात को याद रखा गया है, तो उसका मतलब है कि दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत है। ठीक है, जैसे बड़ी आपी हैं, तो छोटी बहन के सामने जब बड़ी आपी की कोई बचपन की कोई बात करी जाए, तो छोटी बहन बहुत ही एक्साइटेड, अच्छा आप ही ऐसी ऐसे करते थी, और आप ही ऐसी थी, और भैया ऐसे थे, भैया भैया ने ये काम किया था, भैया ने ऐसी मजे की बात करी थी। ठीक है, तो इससे आपस में एक कॉन्वर्सेशन बच्चों में स्टार्ट होती है, और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी कम्युनिकेशन होती है फैमिली मेंबर्स के दरमियान, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के दरमियान। ठीक है, कुछ आज के दौर के अंदर तस्वीरों का बहुत ज्यादा रिवाज चूंकि हो गया है, तो लोग इस काम के लिए जो है वो तस्वीरों को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो तस्वीरों में एहतियात तो करनी चाहिए, बेहतर तो यही है भाई, बाकी उसके ऊपर बहुत सारे एक्सेप्शन आजकल बनी हुई हैं, लेकिन अगर तस्वीरें रखनी भी हैं, तो भाई आप यानी किसी मुकाम की तस्वीर भी तो रख सकते हैं ना, या किसी यानी इवेंट की, आपने जिसके अंदर इंसानों की तस्वीरें ना हो। ठीक है, तो वो तो खैर एक अलग डिस्कशन है, वो हम पहले कई दफ़ा कर चुके हैं। तो तस्वीरों से भी मदद ली जा सकती है, लेकिन तस्वीरों में एहतियात करनी चाहिए कि भाई इंसानों की तस्वीरें बिला जरूरत ना ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, बहरहाल तो रिमाइंडर्स यानी याद दहानी या याददाश्तें। ठीक है, तो दिस पॉइंट वाज अबाउट याददाश्तें। अच्छा, अगला पॉइंट है कि हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि लड़ाई झगड़ा कैसे खत्म करें। लड़ाई झगड़ा कब होता है, कि जब दो इंसानों के इंटरेस्ट जो है ना, जो उन दोनों के जो पसंद होती है या जो मफाद होता है, ठीक है, वो टकराता है। ठीक है, किसी एक मामले के अंदर दो इंसानों का मफाद जब आपस में टकराता है ना, और फिर वो अपने मफाद के लिए खड़ा हो जाता है, या अपने मफाद के लिए खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो उस वक्त जो है ना, फिर एक झगड़े वाली सिचुएशन पैदा हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए फरमाते हैं कि उमूमन बहन भाइयों का एक दूसरे से कोई ना कोई मसला तो बन ही जाता है, लेकिन जब मसला बनता है तो वो हल भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि जी बर्तन जब साथ रहते हैं तो टकराते ही हैं, और टकराते हैं तो फिर शोर तो होता ही है। ठीक है, तो भाई इंसान जो है वो अच्छे खासे मतलब जरूफ की मानिंद हैं, बर्तनों की मानिंद हैं, तो आपस में रहते हैं तो फिर कभी ना कभी तो आपस में टक्कर हो ही जाती है ना, लेकिन उसको हल भी किया जा सकता है ना। लिहाजा बच्चों को समझाएं कि अगर कोई मसला हो तो फौरन हल कर लें, कुछ लेने देने का मामला करना चाहिए। ठीक है, यानी कुछ किसी से लें तो उसको दें भी। ठीक है, सिर्फ लेने के ऊपर सारा एम्फेसिस ना हो कि बस मुझे अपना मफाद चाहिए। ठीक है ना, आपके लिए मैं कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हूं कि आपको भी कुछ मिल जाए, नहीं सिर्फ मुझे चाहिए बस। ठीक है, देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो वो फरमाते हैं कि लेने देने का मामला करना चाहिए, भाई कुछ लो कुछ दो। ठीक है, कुछ मनवा लें और कुछ मान लें। ठीक है, मगर सुलो सफाई कर लें। बच्चों को समझाएं कि देखो हार और जीत की सूरत अच्छी नहीं होती, कि एक बंदा तो जीत रहा है और दूसरा हार रहा है। ठीक है, हारने वाले का दिल जलता रहता है, लिहाजा बच्चे ऐसी बात पे आमादा हों जो विनिंग सिचुएशन, जिसमें जीत का ही मौका है और दोनों के लिए ही जीतने का मौका हो, ताकि उनको गुस्सा और जलन ना हो और बच्चे एक दूसरे से करीब हो जाएं। ठीक है, हार और जीत जो है ना, ये तो या तो मैदान जंग के अंदर होती है। ठीक है, वहां पर तब जाहिर है वहां पे आप कोई मिल बैठने के लिए तो नहीं गए होते ना मैदान जंग के अंदर, तो या तो वहां हुई होती है या फिर किसी टूर्नामेंट के अंदर, किसी मैच के अंदर। ठीक है, वहां पे हार जीत का एक मामला होता है कि भाई जो हारेगा उसको मेडल नहीं मिलेगा और जो जीतेगा उसको मेडल मिलेगा। ठीक है, घरों के अंदर, रिश्तेदारियों के अंदर तो हार जीत का कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए, ये तो बिल्कुल मादून होना चाहिए घरों के अंदर, रिश्तेदारियों के अंदर हार जीत वाला मामला। ठीक है, और वो भी हार जीत जो है, यहाँ पे किस हार जीत की बात हो रही है, यानी नफसानी हार जीत, मादी हार जीत, मादी मामला के अंदर, दुनियावी मामला के अंदर हार जीत, ये तो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट होना चाहिए। हाँ, हार जीत जो है वो जो दीन का मामला होता है उसके अंदर हार जीत होती है। जैसे नबी अलैहिस्सलाम, ठीक है, वो अपने रिश्तेदारों के साथ सबसे पहले बरसरे पैकार किस बात पर हुए कि तुम अपना शिर्क छोड़ो और अल्लाह की बंदगी में आ जाओ। ठीक है, तो उनमें से कुछ कुछ रिश्तेदारों के साथ तो बाकायदा मैदान जंग के अंदर बरसरे पैकार हुए, और वो रिश्तेदार जो थे वो तो मैदान जंग के अंदर जो जिन्होंने नहीं माना था वो जहन्नुम रसीद हुए, लेकिन बाकी जो रिश्तेदार थे वो अल्टीमेटली नबी अलैहिस्सलाम की जेर दस जो है वो आए। ठीक है ना, कुछ जो है वो फतह मक्का से पहले भी आ गए और बाकी सारे जो रह गए थे वो फतह मक्का के मौके के ऊपर आ गए, तो वो नबी अलैहिस्सलाम की जीत थी। किसके साथ जीत थी, किसके अगेंस्ट वो जीत थी, रिश्तेदारों के अगेंस्ट जीत थी, लेकिन वो जीत जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की किसी जाती अगराज के ऊपर बेस नहीं थी, बल्कि वो खालिसतन अल्लाह के हुक्म के ऊपर बेस थी। ठीक है ना, और उसके अंदर उन रिश्तेदारों की खैरख्वाही ही तो थी कि वो जहन्नुम से बच जाए ना। ठीक है ना, तो इस मामले में अगर मतलब हमें तो हुक्म है भाई अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम के उसवा हसना है ना, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना। ठीक है, वो इस मामले के अंदर तो हमें सबसे पहले करना है ये वाला काम, अपने रिश्तेदारों के साथ ये वाला काम करना है जो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने रिश्तेदारों के साथ किया था। सबसे पहले तो दावत और तबलीग शुरू ही रिश्तेदारों के साथ होती है, घर वालों से, बीवी से शुरू होती है, राइट। बीवी और फिर घर के रहने के अंदर रहने वाला जो है वो कोई आपका रिश्तेदार है, फिर उसके बाद जो जो आपके जेरे दस्त और लोग हैं, हजरत जैद बिन हारिसा रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम के गुलाम, राइट। और फिर जो है वो दोस्त अहबाब और करीबी मिलने जुलने वाले, यहाँ से दीन की दावत शुरू होती है। दीन की दावत अमेरिका से शुरू नहीं है, अमेरिका को मुसलमान बना लो और यूरोप को मुसलमान बना लो। ठीक है, या ये उस जमाने में जो है ना, पहले जो है वो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि भी ये लोग तो मानते नहीं, चलो फारस को मुसलमान बनाने पर हम कोशिश करते हैं। हम रोम को जो है मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं, या हम जो है वो मिस्र को मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं किया नबी अलैहिस्सलाम ने, हालांकि भेजे तो वो गए थे रहमतुल आलमीन बना करके, तो अकल से देखा जाए तो करना तो उनको चाहिए था ये वाला काम, लेकिन हम ये वाला काम कर रहे हैं, उन्होंने तो ये वाला काम नहीं किया। उन्होंने तो पहले घर से काम शुरू किया और फिर बहुत बाद में जा करके, यानी 13 साल मक्का मुकरमा की जिंदगी के और 6 साल जो है मदीना मुनव्वरा की जिंदगी के, कितने बने, 19 साल। 19 साल के बाद जो है वो पर्शिया को और रोम को और मकूकस को और यानी बहरेन के बादशाह को और यमन के बादशाह को और फलाने बादशाह को, डिमखाने बादशाह को, 19 साल के बाद उनको खत लिख रहा है, ठीक है ना, जिनको रहमतुल्लाह आलमीन बना करके भेजा गया था। सही है, तो उल्टी गंगा बहाना कोई हमसे सीखा करके, राइट। उल्टी गंगा बहाने का मुहावरा सुना होगा आपने, तो हम एक्सपर्ट्स हैं इसके अंदर, उल्टी गंगा बहाने के अंदर। बहरहाल अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमाए। तो फरमाते हैं कि रिश्तेदारों में विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, वो भी विन मैं भी विन, इसमें अंदर कोई हार जीत वाला मामला नहीं होना चाहिए, ये दुनियावी एतबार से कोई हार जीत का मामला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों को जो है ना वो शुरू से माँ बाप को ऐसी तरबियत देनी होती है कि जहाँ एक दूसरे के साथ कुछ गड़बड़ हो गई, कि उन्होंने हाथ लगा दिया, उन्होंने उसको जो है वो गिरा दिया, धक्का दे दिया, ठीक है, तो उनसे सॉरी करवाना, ठीक है ना। जिसने ज्यादती करी है उससे कहो कि बेटा आप इसे सॉरी करें, आप भाई से सॉरी करें, ठीक है ना। छोटा है तो छोटे से सॉरी करो, बड़ा है तो बड़े से सॉरी करो, ठीक है। तो ये सॉरी कहलवाना पड़ता है, वरना ये सॉरी जो है ना कुछ ऐसी चीज है कि इंसान का नफ्स जो है ना इसके मुंह से सॉरी नहीं निकलता। अब वो छोटा सा बच्चा है, ठीक है ना, आप करके देखे ना कभी, आप उम्मीद है आप लोगों ने तो किया हुआ होगा, ठीक है ना। लेकिन कोई नया है, किसी ने आज ट्राई नहीं किया बच्चों के साथ, ठीक है, वो बच्चे से सॉरी कहलवा करके देखे, बड़ा मुश्किल काम, कोई गंदी चीजें नहीं देखी, कोई उसका जो है वो कोई बहुत ही बुरा मौका, अच्छा होम स्कूल बच्चा है या घर का पला हुआ बच्चा है, ठीक है ना, और आम सा बिल्कुल घराना है, कोई ऐसा तो नहीं है कोई उसको आकर के बोल रहा है कि सॉरी मत करना, सॉरी मत करना, लेकिन बच्चा सॉरी नहीं कर सकेगा, इतना मुश्किल काम होता है सॉरी करना, ठीक है। तो इसकी जो है ना वो यानी नफ्स को बहुत तैयार करना पड़ता है, और छोटे बच्चे का नफ्स जो है वो माँ बाप की तरबियत का के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो सॉरी करवाएं, बल्कि आगे बढ़ करके छोटे बच्चे होते हैं तो उनके आप हक करें, ठीक है ना, आप गले लगाएं एक दूसरे को, ठीक है, तो हक करें, सॉरी करें, और जिस चीज के ऊपर आप लड़ाई कर रहे थे उस चीज को आपस में शेयर कर, ठीक है। और अगर वो ज्यादा कोई अड़ी वड़ी दिखा रहा है या अड़ी दिखा रही है, अड़ी का मतलब समझ है ना, बड़ी बहुत ही सख्ती, नहीं नहीं करूंगी ये वो, तो फिर अच्छा अब आपको अब जो है ना हमने अंधेरे कमरे में बंद कर देना है, या हमने आपको इस किस्म की कोई पनिशमेंट देनी है कि आपसे जो है ना वो हम आपका टॉय ले लेंगे, या आपको जो दोस्तों के घर खेलने के लिए जाने देते थे हम आपको खेलने नहीं जाने देंगे, आपका प्ले स्कूल बंद, आपका फलानी शाम का खेलना बंद, आपका फलानी चीज बंद, अगर आप बात नहीं मानेंगे तो आपसे ये प्रिविलेज वापस ले ली जाएगी, ये जो आपको नियमतें मिली हुई है ना प्रिविलेजेस, ठीक है, ये नियमत आपसे वापस ले ली जाएगी, ठीक है। तो जो ज्यादा कुछ सख्ती वख्ती बच्चा अगर दिखा रहा हो ना तो उस सख्ती को तोड़ना पड़ता है, मारपीट करके तोड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, हाथ लगा के, थप्पड़ मार करके, या बुरा भला कह करके, बुरे अल्फाज बच्चों को सिखा करके, है ना, जब आप बच्चों को बुरे अल्फाज बोल रहे होते हैं बेसिकली आप उसको सिखा रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं आप उसकी वोकैबुलरी जो है ना वो बढ़ा रहे होते हैं गंदे अल्फाज के, ठीक है ना, और मार करके आप बच्चों को मारना सिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बेवकूफियां करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और कोई गुंजाइश नहीं है इनकी, बल्कि इसका सीधा सारा तरीका ये होता है कि उससे कोई, या तो यानी मैंने तो खैर कमरे में बंद करने से शुरू किया था लेकिन वो ऑर्डर गलत है, ऑर्डर ये है कि उसको उससे जो है वो कोई प्रिविलेज वापस ले ली जाए, उसके खेलने का टाइम जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, जिसको कि आम तौर पर अंग्रेजी में कहते हैं क्या कहते हैं उसको, टाइम आउट, हाँ टाइम आउट दे दिया जाएगा आपको, ठीक है, यानी आपको कोई इस किस्म की पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। बच्चों को जो है वो सिर्फ टॉयज शेयरिंग नहीं, बल्कि इवन अपने जो फ्रेंड्स हैं ना, उन फ्रेंड्स के बारे में भी बच्चों को पोजेसिव ना होने दें। जैसे टॉयज के बारे में पोजेसिव हो जाते हैं ना, कि जस्ट ये तो मेरा है और बस मैं किसी को इससे नहीं खेलने दूंगी और मैं किसी के पास इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पास जाए। नहीं, ये ऐसा ठीक है, आपकी आपका नाम तो लगा हुआ है इसके ऊपर, हमने आपको ये गिफ्ट दिया था, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू कंप्लीटली पोजेस इट और आप इसके बारे में ऐसे हो जाएं कि बिल्कुल ही एक्सक्लूसिव ना, मतलब आई हैव अ कंप्लीट एक्सक्लूसिव राइट अपॉन इट, और किसी को बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। तो ना सिर्फ टॉयज के साथ बल्कि इवन फ्रेंड्स के साथ भी बच्चे जो है वो पोजेसिव ना बनने पाए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है बहन भाइयों के दरमियान, कि बड़ी बहन जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ इतनी सीक्रेटिव और ऐसे ऐसे मामला करेगी कि छोटी बहन आकर के अगर उन फ्रेंड से बात करने की कोशिश करनी, नहीं, ये मेरी फ्रेंड है, तुम की क्यों आ रही हो, है ना, मेरी फ्रेंड्स के तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने फ्रेंड्स में जाओ, अपने फ्रेंड्स में जाकर के खेलो, ठीक है। तो इवन फ्रेंडशिप के अंदर भी पोजेसिव मत होने दें बच्चों को, ठीक है। तो तमीज तरीके से इन चीजों का तरबियत के अंदर ख्याल रखना होता है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट है कि जब भी लड़ाई झगड़े वाले हालात हों तो माँ बाप को चाहिए, माँ बाप को चाहिए कि किसी एक बच्चे की ही तरफदारी ना करें, बल्कि इस झगड़े को गैर जानबदार होकर हल करें, ठीक है। आज सुबह कुदरतन खवातीन की क्लास में जो मिसाली सास का मौजू चल रहा है, तो उसमें जो आखिरी पॉइंट पढ़ा था वो यही था कि अगर बेटे और बहू की लड़ाई हो जाए तो सास को चाहिए कि वो बहू की तरफदारी करें, ठीक है। तो उसमें भी खैर काफी तफसील थी जो कि उस क्लास में बयान करी थी, लेकिन तरफदारी जो, जब इंसान अपने करीबी, जो वाकई करीबी है भी और करीबी ताल्लुकात भी उसके ज्यादा अच्छे बने हुए हैं, तो जब आप किसी कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन के अंदर करीबी को सपोर्ट कर रहे होते हैं ना, तो फिर जो दूर का होता है ना वो और दूर चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो खैर वो वाली बात नहीं है, लेकिन माँ बाप को चाहिए कि किसी एक की तरफदारी ना करें, ठीक है। तो अगर किसी ने गलती करी है तो उसको अगर आप समझा रहे हैं या थोड़ा सा सख्ती के साथ भी समझा रहे हैं ना, तो उसको जहां ये कह रहे हैं कि तुमने क्यों मारा, आपको सजा मिलेगी, आप की ये बात जो है वो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है ना, तो साथ साथ एक जुमला ये भी कह दें कि अगर वो भी मारता ना आपको तो उसको भी सजा मिलती, और उसकी इस गलती को भी हम इग्नोर ना करते और उनको भी हम पनिशमेंट देते और उनसे भी जो है ये प्रिविलेज वापस ले लेते हैं, ठीक है ना, ताकि उसके जहन में ये बात रजिस्टर हो जाए कि भाई मुझे कोई कोई ये नहीं किया जा रहा, मुझे कोई पिनलाइज एकदम जो है ना वो कोई अलग सर तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा है कि मुझसे तो ये नफरत ही करते हैं और जो है ना वो मुझे तो हमेशा डांट ही पड़ती है और मेरी तो हर बात इनको बुरी ही लगती है, ये जज्बात उसके अंदर पैदा ना हो पाए, बल्कि उसके जहन में आ जाए कि भाई रूल इज रूल, दिस इज अ रूल, और ये रूल अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी, अगर भैया तोड़ेंगे तो भैया को पनिशमेंट मिलेगी, या आप ही तोड़ेंगे तो आप ही को पनिशमेंट मिलेगी, तो मुझे कोई सिंगल आउट नहीं किया जा रहा इसके अंदर, सही। उम्मीद है कि बोल तो बहुत कुछ दिया है, लेकिन आप लोगों ने कुछ कैच करके कुछ लिखा विखा भी होगा, सही। ये एक बहुत बड़ा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके अंदर माँ बाप से बहुत गलती होती है, कोताही हो जाती है, कि जब जाहिर है बच्चे ने कोई गड़बड़ करी है, कुछ नुकसान किया है या किसी दूसरे को मारा है ना, तो चूंकि अपने आप पे खुद काबू नहीं होता ना, अपने गुस्से पे काबू नहीं होता, अपने हाथ पे अपनी जुबान पे काबू नहीं होता, तो बस जो बरसना शुरू करते हैं तो उसमें फिर वो ये सारी बातें याद ही रहती फिर उसके बाद, और वो इतना कुछ कह जाते हैं या इतना कुछ कर जाते हैं कि वो बच्चा जो है ना वो अपने आप को कोई बहुत बड़ा मुजरिम समझ करके फिर फैसला कर लेता है कि बस ठीक है, मैं तो हूं मुजरिम, मैं तो हूं ही मुजरिम, तो बस अब तो मेरे लिए रास्ते बंद हैं, मैंने तो अब यही करना है ना, अपने आप फिर वो सर्वाइवल टैक्टिक्स के ऊपर या तो चला जाता है कि किसी तरीके से उसने जो है ना वो इस किस्म की घुटन वाले माहौल के अंदर अपने आप को सर्वाइव करना है, अगर वो फाइटर फाइटर किस्म का बच्चा है, तो फिर उसने जो है वो यही फैसला करना है। शैतान के दायरे, शैतान तो साथ लगा हुआ होता है मुस्तकिल, कि बस ये तो एक घुटन वाला माहौल है, तो नाउ आई हैव टू बी टफ इन ऑर्डर टू बी एबल टू सर्वाइव, ठीक है ना। तो या तो फिर वो सर्वाइवल मोड में आ जाएगा टफ बन करके, या फिर वो विड्रॉल मोड में चला जाएगा, मायूसी का शिकार हो जाएगा, अपने आप को अलग कर लेगा या कर लेगी, और फिर वो शैतान उसको डिप्रेशन के रास्ते पे लेकर के जाएगा, मायूसी के रास्ते पे लेकर के जाएगा, और फिर ऐसे बच्चे जो है ना वो फिर अल्टीमेटली जाकर के अपनी जान तक ले लेते हैं, खुदकुशी तक कर लेते हैं। लेकिन खुदकुशी एक इंतहाई इकदाम होता है, इसकी इब्तिदा भी कहीं ना कहीं हुई होती है ना, ठीक है। तो इब्तिदा कहाँ से हुई होती है? इस किस्म की हरकतों से, माँ बाप की गलतियों की वजह से इब्तिदा हुई होती है इस सफर की, जो कि खुदकुशी पे जाकर के कल्मिनेट होता है, राइट। तो हजरत ने तो एक जुमले में बात, लेकिन हजरत की बातें फिर क्योंकि हमने दूसरे मकामात के ऊपर और बहुत सारी चीजों पर अलहमदुल्ला कुछ सीखने की कोशिश करी है, तो बड़ों की बात की तो फिर तफसीर की जरूरत पड़ती है, और जब तफसीर करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारी चीजें तो याद आ जाती हैं। अल्लाह ताला याद करवा देते हैं, आप लोगों की बरकत से याद दिला देते हैं। फिर आगे फरमाते हैं भाई की अहमियत। एक और पॉइंट बड़ा अहम है कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव ए ब्रदर, बहनों के लिए ये क्यों जरूरी है कि घर में भाई भी हो। तो रिसर्च का पॉइंट है कि हिज प्रेजेंस रिमाइंड यू ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली, कि भाई की मौजूदगी से आपको फैमिली की अहमियत का अंदाजा होता है कि पूरी फैमिली कैसी होती है, ठीक है। यानी पूरी फैमिली से हजरत का मुराद ये है कि अम्मा अब्बा और बहन और भाई, ठीक है, बेटा और बेटी, ये माशाल्लाह दोनों जेंडर जो है वो दोनों तरफ जो है मौजूद हैं। तो ये एक यानी इसको लोग कह देते हैं कि जी ये एक मुकम्मल फैमिली है, ठीक है। कभी जो है वो दो भाई दो बहन या तीन बहनें और एक भाई, इस तरह से भी जो है वो फिर लोग देख करके, अच्छा जी अब आपकी फैमिली कंप्लीट हो गई। तो भाई की मौजूदगी से आपको फैमिली की अहमियत का अंदाजा होता है कि पूरी फैमिली कैसी होती है। ही विल फाइट फॉर यू इवन इफ ही इज फाइटिंग विद यू, ठीक है। यानी अगर वो आपसे आपके खिलाफ भी लड़ रहा है ना, भाई हमेशा अपनी बहन की तरफदारी करेगा, अगरचे वो उसी बहन के साथ ही क्यों ना लड़ा, ठीक है ना। यानी किसी दूसरे मौजू के ऊपर अगर उसकी लड़ाई हो भी रही है, फिर भी किसी तीसरे शख्स के खिलाफ जो है ना वो उसकी तरफदारी करेगा। भाई का ये मामला भी है कि अगरचे बहन के साथ उसकी लड़ाई चल रही होगी, लेकिन जब कोई तीसरा बंदा बहन को तंग करने आएगा तो वो बहन की तरफ से उसके साथ लड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। तो आमतौर पर हमारे माशरे के अंदर ये देखा जाता है कि जब बहन जो है ना वो अपने खाविंद से लड़ करके आई होती है ना, या खाविंद ने बहुत ज्यादा कोई बुरा मामला अपनी बीवी के साथ किया होता है इसकी बहन के साथ, तो फिर भाई जो है ना, जो अगर वो स्टैब्लिश्ड हैं, उनके पास जो है वो अपना यानी एक्सेस सिस्टम सेटअप वगैरह है, तो भाई आगे बढ़ के कहते हैं कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वापस जाने की, हमारा घर है ना, हमारे पास रहो बस, है ना, अब हम उससे निपट लेंगे, हम तुम्हें उसके पास वापस नहीं जाने देंगे वगैरह, ठीक है। तो आपस में भी कुछ ना कुछ इनकी चल रही थी, लेकिन ऐसे मौके के ऊपर ये बहन को सपोर्ट कर रहे होते हैं। आमतौर पर ऐसा होता है, आजकल जरा इसमें जाहिर कमी आ रही है, जो एक अलग मौजू है। फिर अगला पॉइंट के ही विल नॉट जज, वो अपनी बहन के बारे में फैसला कुन अंदाजे नहीं लगाता, यानी नेगेटिवली जज यू, ठीक है। तो भाई उमूमन जो अच्छे मोहब्बत करने वाले भाई होते हैं तो, और आमतौर पर कम अज कम अपनी शादी से पहले जो है ना वो भाई बहनों के साथ ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। कुछ जगहों पर जहां पर बीवियां जरा ज्यादा इन कंट्रोल होती हैं अपने शोहर के, ठीक है, जहाँ पे यानी बहू का पलड़ा ज्यादा भारी होता है नंदों के मुकाबले में, ठीक है, तो वहां पर जो है ना फिर शादी के बाद भाई नेगेटिव ओपिनियन हो जाता है बहनों के बारे में। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आमतौर पर नंदे ही जो है वो सेकंड सास का रोल प्ले कर रही होती है, ठीक है। तो वो फिर अपने नंद जो है वो बड़े मजे मजे के काम कर, हमें हैरान होते हैं ना, मतलब अकल कहाँ चली गई, कहाँ आई भी थी कि नहीं आई थी, क्या कहाँ चली गई, ठीक है। यानी बहनें इतना ज्यादा एब्यूज कर रही हैं, इतना ज्यादा एब्यूज कर रही हैं। तो जब शौहर साहब से पूछा कि भाई आप कि क्या हो रहा है सब कुछ, तो आगे से ऐसे जवाब देते हैं जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, सब ठीक है ना। तो यानी नजर ही नहीं आता कि क्या हो रहा है उनके घर के अंदर, कौन अब्यूज कर रहा है और कौन जो है वो अब्यूज हो रहा है। और ये अपने मगन है पता नहीं क्या, या तो वो कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में मसरूफ हैं, मगन है उसके बारे में, या अपनी जॉब में मगन है, या जो है वो किसी और किस्म के क्रिकेट शिरकेट के अंदर मगन है, क्या है घर में क्या हो रहा है, बहनें क्या कर रही हैं, अम्मा क्या कर रही हैं, ठीक है ना। ये उस घर की बात कर रहा हूँ जहाँ पे के बेगम साहिबा जो है वो नीचे होती हैं और बाकी अम्मा और बहनें जो है वो चढ़ी हुई होती हैं। तो हैरानी होती है कि यार इस लड़के को कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा दूसरे लोग भी बता रहे हैं कि इनके घर में ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनको खुद नजर नहीं आता ये सारी बातें। तो ये वाला पॉइंट जो हजरत का है कि ही विल नॉट जज यू, यानी वो आपके बारे में फैसला कौन अंदाजे नहीं लगाएगा। तो ऐसा भी होता है कि बहन बुरा भी कर रही होती है और बहुत ज्यादा बुरा कर रही होती है, लेकिन इसको जो है ना वो बहन की बुराइयां नजर नहीं आ रही होती, ठीक है ना। तो भाई ऐसे भी होते हैं। अच्छा क्या लिखा आपने भाई इतना लंबा चौड़ा, कि कभी जो थ्रेट देते हैं कि आउटिंग बंद हो जाएगी, लेकिन जब वक्त आया तो भूल गया या नजरअंदाज कर दिया, तो क्या इससे सख्ती करना चाहिए, या यानी नेक्स्ट टाइम याद आया तो उसको ये वाली सजा फिर देना चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। क्या इस इग्नोरेंस से बच्चे आइंदा शरारत करने से मजबूत होंगे, या उसे ये सजा देकर ही रहना चाहिए जब याद आए। भाई क्या मतलब, कि आप कहना क्या चाहते हैं, कि बच्चे को जब आपने थ्रेट किया कि हम तुम्हारी आउटिंग बंद कर देंगे, ठीक है ना, तो बच्चे ने अगर सॉरी कर ली और बच्चा जो है वो सहम गया, और आपको आपको देख करके इतना तो अंदाजा हो जाना चाहिए ना अपने बच्चे को कि भाई इसने आपके इस थ्रेट को सीरियसली लिया है, और ये जो है ना वो अपने इस गलती पे थोड़ा नादिम शर्मिंदा है और आइंदा ना करने का कुछ इरादा नजर आ रहा है इसका, तो फिर आप उस सजा को जाहिर है नहीं देंगे उसको, क्योंकि सजा देना तो मकसूद नहीं है ना, मकसूद तो ये था कि उसके दिल में नदामत और शर्मिंदगी पैदा हो, ठीक है ना, और उसका जो वो रिजॉल्व था कि नहीं मैं तो करूंगा, वो रिजॉल्व टूटे, ठीक है ना। तो अगर वो टूट गया तो फिर हर की सजा मत दें उसको जिसका कि आपने उसको थ्रेट किया था, लेकिन अगर रिजॉल्व नहीं टूट रहा तो फिर उसको करके दिखाएं, ठीक है, कि नहीं यू आर सीरियस अबाउट इट, ठीक है, आप मजाक नहीं कर रहे थे, आपकी जुबान को जो है ना वो ये मत समझो कि ये तो उनकी तो आदत है और ये तो आदतन बोलते हैं और फिर उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है ना। नहीं बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होगा आपका भी और उस बच्चे का आपसे ज्यादा नुकसान होगा। और दूसरी बात यह है कि भाई इतना लॉन्ग टर्म का वादा कोई थोड़ी कर रहे हैं उससे कि वो वक्त आते आते जो है वो पहली बात तो या तो आप भूल जाएं, या ये कि जो है वो मसला ही रफू, ये होता है ना रफा दफा हो गया मसला, बच्चे ने ना तौबा करी ना उसने माफी मांगी, लेकिन जो है ना वो चूंकि वक्त गुजरने के साथ अब आपकी अपनी औलाद है ना, तो एक मामला नॉर्मल हो जाता है, घर में दूसरे काम शुरू हो जाते हैं। तो इतना लंबा गैप वाला थ्रेट मत दें उसको कि जिसके अंदर मामला वैसे ही रफा दफा हो जाए, कोई ऐसा थ्रेट दें जिसमें, और वो थ्रेट देने का की वजह क्या है कि जब इस किस्म के सीरियस उसने मसला किया है तब थ्रेट दें, वरना कोई थोड़ी थ्रेट देने को कह रहे हैं, ठीक है। तो वो जरा शॉर्ट टर्म थ्रेट दें ताकि वो ये ना हो कि आई गई बात हो जाए फिर, ठीक है, बच्चों को याद रहेगा कि ये इन्होंने मुझे धमकी दी थी और जो है ना ये गोल कर गए इसको, ठीक। तो भाई अब इसमें तो सेल्फ जजमेंट इस्तेमाल करनी होती है। अच्छा टाइम तो हो गया, इस पॉइंट को पूरा कर लें, यू विल नॉट, हाँ बस हो गया। अगला पॉइंट, चलिए पेज मुकम्मल कर लेते हैं, ये आदत है ना थोड़ा सा लेट करने की चीज़ों को, अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। ये फिर एक और पॉइंट भी है कि जब शादियां हो जाती हैं तो ब्रदर लव्स सिस्टर्स किड्स एज दे आर हिज ओन चिल्ड्रन, भाई अपनी बहनों के बच्चों से इस तरह मोहब्बत करते हैं जिस तरह के ये उसके अपने बच्चे हों, ठीक है। तो इसी वजह से मामुओं को जो है ना वो चंदा मामू का लकब मिला है, ठीक है, वो जाहिर है बहन की भाई से मोहब्बत होती है, तो उसने चंदा चाचू, हालांकि चाचू के साथ चंदा ज्यादा अच्छा चलता था, ठीक है, चंदा चाचू, लेकिन आपने कभी सुना नहीं होगा कि चंदा चाचू, ठीक ठीक है, तो या तो चंदा खाला होती है या चंदा मामू होता है, ठीक है। तो उसको अपने भांजे और भाई भांजियों से ऐसी मोहब्बत होती है जैसे अपने बेटे और बेटियों से होती है, ठीक है। तो काफी सालों पहले से एक सर्वे स्टार्ट हुई भी है, ईमेल्स के ऊपर आते रहते हैं उसके ऊपर, मामू इन पाकिस्तान, ठीक है। तो वो मामू इन पाकिस्तान क्या होता है कि आप अगर मुल्क से बाहर रहते हैं ना, तो अगर पाकिस्तान में आपका कोई मामू है ना, तो आप उस मामू से सारे काम करवा सकते हैं, ठीक है। वो मामू हमेशा तैयार रहेगा काम करने के लिए, वो मना नहीं कर सकता। तो किसी ने किसी अल्लाह के बंदे के दिल में आइडिया डाला कि चलो मैं इस नाम की एक सर्विस स्टार्ट कर लेता हूँ, मामू इन पाकिस्तान, यानी वी लाइक योर मामूस, वी विल डू एवरीथिंग फॉर यू, ठीक है। ऑफिशियल अटेस्टेशन वगैरह, सर्टिफिकेशन, इस किस्म की चीज जो काम होते हैं वो हम आपके लिए करवा देंगे, आप बस हमें थोड़े से पैसे भेज दिएगा। तो सगा मामू होता है वो तो पैसे भी नहीं लेता बेचारा, ठीक है। कोई सवाल या कमेंट हो तो आप पूछ लीजिए, वरना मैं यहाँ पे क्लास खत्म करूँगा। कोई सवाल तो नहीं है तो फिर हम रोकते हैं। अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम।